आप पढ़ते हैं स्वीडन के बारे में। पहले हम लोग पढ़ा करते थे स्वीडन पैराडाइज ऑन अर्थ कहते थे, यह भू स्वर्ग है जहां पर तुमने स्वर्ग भले न देखा हो स्वीडन को देख लो, सारे स्वर्ग के सुख हमारे सामने हैं, ऐसा स्वीडन। तो जो पैराडाइज था वहां पर एक दिन अचानक हेल आ गया। आप पढ़ते हैं आज से लगभग 25-30 साल पहले जो भू स्वर्ग था उसने भू नरक होना शुरू किया, और स्वीडन में कैसा नरक आ गया है। आप में से जो लोग गए हो स्वीडन या जो लोग वहां के बारे में पढ़ते हो, आप पढ़ेंगे कि वहां का जीवन कितना नारकीय हो गया है, कैसी अव्यवस्था हो गई है। बाहर से तो सारी चमक अच्छी लगती है, पर जब हम चमक के पास में जाते हैं तो लगता है इससे तो हमारा देश अच्छा है। ठीक है, हम कई बातों में पिछड़े हुए हैं, हमारा चरित्र नीचे गिरा हुआ है, भौतिक दृष्टि से हमारे जीवन में कितने प्रकार के अभाव हैं। परंतु आज भी आप गांव में जाएंगे तो गांव में सहृदयता मिलेगी, गांव में जाएंगे तो आपको सहानुभूति मिलेगी, गांव में जाएंगे तो आपको मानवता मिलेगी, ऐसा आपको लगेगा। तो भारत में शहरों को देख करके भारत का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत तो वस्तुतः गांव में रहता है, पर धीरे धीरे गांव भी बिगड़ते जा रहे हैं। उसके कारण क्या है इस पर हमें चर्चा नहीं करनी। तो यहां पर हम यह कह रहे थे कि केवल अविद्या के क्षेत्र में हो, उपासना के क्षेत्र में और आत्मतत्व विरहित, वह भी गलत है। अविद्या के भीतर में बहुत ताकत है। क्या ताकत है? वह हमें मृत्यु से उबार देती है, इतनी ताकत है। अविद्या से, कर्म से हम अन्न पैदा करते हैं, कर्म के माध्यम से हम भौतिक तरक्की लाते हैं, और भौतिक तरक्की का मतलब हमारे भौतिक अभाव दूर होते हैं, और जहां भौतिक अभाव दूर होते हैं वहां तो मनुष्य मानो मृत्यु को ही पार करता है। मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं मर गया, मुझे भौतिक अभाव है तो मैं मर गया, गर्मी ज्यादा पड़ी तो मैं मर गया, ठंड ज्यादा हो तो मैं मर गया, हम ही कहते हैं ना। आप देखेंगे कि आपकी बातचीत में आप कितनी बार मैं मर गया कहते हैं, थोड़ी सी कोई भी असुविधा हो गई तो हम कहते हैं मैं मर गया। तो यह जो कर्म है, यह जो अविद्या है, आपको इस मृत्यु से उबारेगी। वह उबारती है, उसमें ताकत है, पर वह ताकत कब प्रकट होगी? कहते हैं आत्म तत्व के साथ इसे जोड़ दो तो देखोगे उसके भीतर की ताकत प्रकट हो जाएगी। आत्मतत्व मानो कैटेलिटिक एजेंट के समान, कि अविद्या के साथ कर्म के साथ आत्मतत्व को जोड़ दिया, ईश्वर केंद्रीय बने रहे, और ईश्वर को केंद्र बना करके हमने भौतिकता के क्षेत्र में काम किया, कितनी तरक्की होगी, और उस तरक्की में मौत को पार कराने की क्षमता रहेगी। और उसी प्रकार विद्या के भीतर में अमृत है, पर वह अमृत कब प्रकट होता है? जिस समय हम विद्या का योग आत्मतत्व से करते हैं। विद्या का लक्ष्य क्या? आत्मतत्व। ईश्वर को केंद्र बनाकर के जब हम विद्या की चर्चा करते हैं, विद्या में रत रहते हैं, तो विद्या में जो अमृतत्व है वह हमें प्राप्त होता है। इसे यूं समझें जैसे एक नदी, और नदी के उस पार जाएंगे तो बहुत बढ़िया, ऐसा सुंदर बगीचा, ऐसा सुंदर उद्यान जहां पर अमर फल लगे हुए हैं, पर इस नदी को पार करना कितना कठिन है। तो दो बातें हो गई, एक तो हम नदी को पार करें और नदी को पार करके उस उद्यान में जाएं, अमर उद्यान में, जहां जाकर के हम अमर फल को चखें, उसका स्वाद लें, उसका भक्षण करें, उसका लाभ लें। तो यह जो पार करना है नदी को, यह मृत्यु को पार करना है, अमृतत्व पाना है उस तीर में जाकर के, उस अमृत बाग में, वहां के फलों का आस्वादन करते हुए अमृत को पाना है। तो ये दो बातें अलग अलग हो गई। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर यह कहा गया कि जो कर्म करता है, जो अविद्या में लगा है, पर उसका केंद्र है ईश्वर, केंद्र है आत्मतत्व, वहां पर निश्चित होकर के वह कर्म करता है भौतिक क्षेत्र में, मानो या मृत्यु की नदी को पार कर रहा है, और विद्या में साथ ही साथ वह लगा हुआ है उसी आत्मतत्व को केंद्र बना करके तो विद्या के सहारे उसके भीतर में जो अमृतत्व है उसकी उपलब्धि करता है। तो ऐसे इसको समझना है इन तीनों श्लोकों को। तो यह अविद्या और इसे हम कहेंगे विद्या। तो कोरी विद्या यह हमें मालूम नहीं कहां भटका देती है, कोरी अविद्या यह हमें कहीं मृत्यु में फंसा देती है। तो इस मंत्र को समझने के लिए यह दोनों उदाहरण आप साथ में रखें। तो यह जो उपदेश दिया गया कर्म पर कितना जोर दिया गया, ऐसा लगता है जब ईशावास्योपनिषद लिखा गया या जिस समय उसकी अनुभूति ऋषि को हुई उस समय इन दोनों में बहुत झगड़ा था ज्ञान और कर्म में। तो ऋषि समन्वय करते हैं। मैंने कल कहा था कि कर्म और ज्ञान का समन्वय बीज ईशावास्योपनिषद में दिखाई देता है, जो बीज महान वटवृक्ष के रूप में गीता के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां पर कर्म और ज्ञान के ये जो झगड़े हैं उनको दूर करने की चेष्टा हुई है। तो कहा क्या गया है, कहा गया है कि देखो भाई कर्म, तुम ज्ञान से झगड़ा क्यों करते हो? ज्ञान के पास देखने की आंखें हैं। ज्ञान से कहा गया कि भाई तुम कर्म से झगड़ा क्यों करते हो? कर्म के पास चलने के पैर हैं। तो हमें आंखें भी चाहिए देखने के लिए और हमें पैर भी चाहिए चलने के लिए। मुश्किल क्या हो गई कि भारत के पास तो आंख रही पर चल नहीं पाया, पैर न हो और मैं केवल दिशा की ओर देखता रहूं तो लोग तो मुझे पागल ही कहेंगे। कोई खड़ा है रास्ते में और आप देखते हैं कि बहुत देर से वह रास्ते में ही खड़ा है। क्यों जी, क्या कर रहे हो? कहते देख रहा हूं। अरे क्या देख रहे हो, क्या देखते भी रहोगे ना, कहीं चलोगे भी? यह जैसे एक स्थिति है जो हम नहीं चाहते कि केवल देखते भी कोई खड़ा रहे। दूसरा है बहुत जोरों से भाग रहा है। कहो भैया कहां भाग रहे हो? कहीं नहीं। अरे क्या गजीब हो, कहीं नहीं भाग ही रहे हो, दौड़ ही रहे हो। जिसके पास लक्ष्य ही नहीं है भागता ही चला जा रहा है। तो यह जो लक्ष्य है और दिशा है इन दोनों का मेल आत्म तत्व के माध्यम से होता है। तो हमें कर्म भी चाहिए दिशा भी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं, हमने पढ़ी थी एक कहानी, बहुत बचपन में एक गांव में आग लगी तो सब लोग अपने प्राण बचा करके भाग गए। दो लोग नहीं भाग पाए, एक अंधा था, आग की लपट का अनुभव तो करता था पर उसे दिशा नहीं सूझ रहा था, यूं टटोल रहा था। दूसरा था पंगू, उसके पैर नहीं थे, वह देख रहा था कि आग की लपट उसकी तरफ आ रही है और वह यह भी देख रहा था कि बचने का यह रास्ता है, पर चूंकि उसके पैर नहीं थे वह देख रहा था, विचार कर रहा था कि कुछ ही क्षणों में लपट आकर के मुझे भी भस्म कर देगी। इतने में उसकी नजर अंधे पर पड़ती है। कहा उसने सूरदास, हां मेरी आवाज सुनते हो? हां। आवाज सुनकर के मेरे पास आ जाओ। आ गया। कहा कि देखो हम दोनों मर जाएंगे, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे कंधे पर बिठा लो, मैं अपनी आंखों से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम अपने पैरों से भगा करके ले चलना। दोनों के दोनों ऐसा ही करते हैं और अपने प्राण बचाने में समर्थ होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह जो अंधा है वह है कर्म, वह है अविद्या। उसके पास भागने के तो पैर हैं पर देखने की आंखें नहीं है। और यह जो विद्या है वह है वह लंगड़ा, उसके पास देखने की आंखें पर भागने के पैर नहीं है। इन दोनों की युति होनी चाहिए। इसको अंध पंगु न्याय कहते हैं संस्कृत साहित्य में। तो दोनों मिलकर के भाग जाएंगे और पंगु की स्थिति कहां होगी, विद्या कहां पर रहेगी? वह अविद्या के कंधों पर रहेगी। वह दिशा दर्शन करेगी, वह कर्म को दिशा बताएगी कि तुम इस दिशा में चलो, इस दिशा में भागो। तो विज्ञान और धर्म का समन्वय भी ऐसा है। विज्ञान के पास भागने के पैर हैं, धर्म के पास देखने की आंखें हैं। इन दोनों की युति होनी चाहिए तब जीवन बनता है। तो यह फिर क्या करेगा, विज्ञान मृत्यु से हमारी रक्षा करेगा और धर्म हमारे जीवन में अमृतत्व ला देगा। यही यहां पर कहा गया है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। दोनों का फल अलग अलग है, अविद्या का फल अलग और विद्या का फल अलग। अविद्या का क्या फल है, वह हमें मृत्यु से पार करा सकती है और विद्या का क्या फल है वह हमें अमृतत्व प्रदान कर सकती है। पर कब इन दोनों की ये ताकतें प्रकट होती हैं? जब आत्म तत्व का योग होता है तब। ईश्वर को केंद्र बनाकर के जीवन के कर्म करो ना, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा करो, यह संदेश है हमारे उपनिषदों का। और हम कितने आलसी हो गए, हम कितने काम चोर हो गए। भारत में आप देखते हैं आज तो हमारी यह दशा है कि हम काम करना चाहते ही नहीं है, बिल्कुल हमारी मानो प्रवृत्ति ही नष्ट हो गई है। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि ठीक है, हम समझते हैं कि इस प्रकार यह जो आलस्य का भाव है उससे दिन हमारे मजे से बीत रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि यह जो आलस्य का भाव हम नौकरी में प्रकट करते हैं, ऑफिस जाकर के प्रकट करते हैं, यह आलस्य हमारे जीवन को खोखला कर रहा है। यह जो सिंसरिटी का अभाव, यह जो निष्ठा का अभाव हमें अध्यात्म के क्षेत्र में भी पीड़ित करेगा, हम धर्म के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो एक जगह काम चोरी करता है वह दूसरी जगह भी काम चोरी करता है। यदि मैं अपने कर्तव्य के क्षेत्र में काम चोर हूं तो मैं कभी साधना के क्षेत्र में ठीक नहीं हो सकता, यह आप गांठ बांध लीजिए। वे ही लोग ठीक ठीक साधक होते हैं जो कर्तव्य निष्ठ होते हैं, जो भी उनको कर्तव्य मिला है निष्ठा के साथ जो कर्तव्य करते हैं वे ही ठीक ठीक साधक भी होते हैं। तो कामचोर व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में भी कामचोर होता है, वह भले ही कितने शास्त्रों का अध्ययन कर ले और बहुत से श्लोकों को मुखस्त कर ले, बोल भी दे, पर जीवन खोखला हो जाता है। इसलिए ईशावास्योपनिषद में इस पर बड़ा जोर दिया गया, कर्तव्य निष्ठ बनो, कर्म निष्ठ बनो और विद्या अपने जीवन में लाने की चेष्टा करो, भगवान को केंद्रित बना करके चलो। देखोगे इस कर्म के द्वारा तुम मृत्यु को पार करोगे और उस विद्या के द्वारा अमृतत्व की उपलब्धि करोगे, यह कहा गया। इसके बाद के जो 3 मंत्र हैं ठीक ऐसे ही मंत्र हैं, पर अविद्या की जगह असंभूति शब्द आया है और विद्या की जगह आया है संभूति। असंभूति और संभूति, इसका क्या मतलब हुआ? असंभूति का मतलब हुआ नहीं होना, संभूति का मतलब हुआ साथ होना। संभूति का मतलब साथ, सम भूति भव भू होना और सम माने एक साथ। तो इसका हम यह तात्पर्य लेते हैं, संभूति माने जिसको हम कहेंगे एक आत्म साधना, व्यक्ति परक साधना, और संभूति का मतलब सामाजिक साधना जो समाज को लेकर के चले एक भिन्न दृष्टि से। मानो ये 3 मंत्र हमारे समक्ष कहे गए, पहले तो अविद्या और विद्या की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से ये बातें हमारे समक्ष कही गई। अब यहां कहा जाता है एक व्यक्ति होता है जो अपनी मुक्ति अपनी मुक्ति करता है। जैसे मैं होता हूं तो अपनी साधना जब करता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी साधना करूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक तो यह स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है जो समाज को लेकर के चलना चाहता है, सामाजिक साधना करना चाहता है, जो कहता है भाई समाज के क्षेत्र में सेवा का काम करो, यह दूसरी स्थिति है। स्वामी विवेकानंद ने इन दोनों स्थितियों का सुंदर वर्णन किया है। वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो व्यक्ति कभी कभी इतना अहमवादी हो जाता है साधना का नाम लेकर के, बड़ा स्वार्थी हो जाता है। कैसी अद्भुत बात उन्होंने कह दी कि व्यक्ति साधना और अध्यात्म का नाम लेकर के बड़ा स्वार्थी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया, वह उदाहरण मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे हम काशी जी गए, वहां पर विश्वनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, कितनी भीड़ रहती है, और वहां पर मैं चाहता हूं कि मैं जाकर के सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करूं। वहां पर बूढ़ी माई है, बूढ़े बाबा भी खड़े हैं, भीड़ में हैं, धक्का उनको लगता है, बूढ़ी मैया गिर पड़ी, बूढ़ा बाबा गिर पड़ा, और मैं जवान में रौनता हुआ निकल जाता हूं ठेलता हुआ, किसके लिए? कि मैं जाकर के पहले शंकर जी का अभिषेक करूं और पुण्य कमाऊं। अब यह धर्म है या अधर्म है? स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं, कहते हैं यह तो अधर्म है, तुम अपनी मुक्ति के लिए अपने पुण्य के लिए दूसरों को धक्का दे करके दूसरों को कुचल करके जाते हो तो यह क्या धर्म है? तो धर्म कब होता? स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में धर्म तब होता, मैं बूढ़ी मैया को उठा लेता, कहता चल मैया मैं तुझे सहायता देता हूं, चल तू भगवान शंकर का अभिषेक कर ले, और मैं मैया को पकड़ करके जाता हूं और कहता हूं ले मैया तू अभिषेक कर ले, पर भीड़ के कारण अभिषेक करने का अवसर नहीं मिलता। पर यह जो मैंने एक अपाहिज की सेवा की, एक बूढ़े की सेवा की, बूढ़े बाबा को उठा करके मैं ले गया, तो यह मुझे बहुत पुण्य मिल गया। मैं जो ठेल करके जाता हूं अपनी साधना करने की दृष्टि से वह स्वार्थ है, स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में वह धर्म नहीं है। धर्म किसमें है? जहां मैं दूसरों को सहायता करता हूं पुण्य लाभ करने में, जो अपनी मुक्ति कहता रहता है, मुक्ति उससे बहुत दूर है, और जो दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करता है उसे पहले मुक्ति मिलती है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो अपनी मुक्ति के लिए कातर होता है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो असंभूति की बात कही गई है, जहां पर यह कहा गया है कि अंधम तमह प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमह ये वो संभूत्याम रता, ठीक वही अर्थ है। जो असंभूति की उपासना करता है वह गहरे अंधकार में जाता है, और जो संभूति में रहता है वह मानो और भी अधिक गहरे अंधकार में जाता है। फिर कहते अन्य देवाहुर संभवात अन्य दाहुर असंभवात इति सुषुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षरे। कहा कि देखो संभव का फल अलग बताया और असंभव का फल अलग बताया। संभूति का फल अलग है, असंभूति का फल अलग है, ऐसा हमने धीर पुरुष ना है। फिर उसके बाद कहते संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेद उभयम सह वही, ठीक वही तद वेद, तद माने आत्म तत्व, जो आत्म तत्व को इन दोनों के साथ जानता है, संभूति के साथ असंभूति के साथ। यहां पर असंभूति के लिए विनाश शब्द का प्रयोग हुआ है, संभूति के लिए संभव यहां कहा संभूति और असंभूति के लिए विनाश, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतम अश्नुते, वह विनाश के सहारे मृत्यु को पार करता है और संभूति के सहारे अमृतत्व की उपलब्धि करता है, अमृतत्व को जीवन में पा लेता है। अब यह जो कहा गया ठीक उसी दृष्टि से देखने की चेष्टा कीजिए कि मैं व्यक्तिगत साधना करना चाहता हूं तो व्यक्तिगत साधना करने वाला स्वार्थी होता है या नहीं? यदि ईश्वर नहीं है केंद्रित मेरे जीवन में तो मैं धर्म का नाम लेकर के भी बड़ा स्वार्थी हो जाता हूं। और यह जो संभूति जो कहा गया है, संभूति माने समाज की सेवा, जिसको हम कहेंगे समाज साधना, सामाजिक साधना। सामाजिक साधना में अगर मनुष्य ईश्वर को केंद्र बनाकर के न करे तो सामाजिक साधना में क्या होता है? मनुष्य रास्ता भटक जाता है, उसको नाम मिलता है, यश मिलता है, और उस नाम और यश में भटक गया। सामाजिक साधना वह करना चाहता है पर कहीं वह भटक गया है, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पकड़ा। वह समझता है कि समाज को मैं सुधार दूंगा, पर समाज को सुधार देने से कैसे सुधारेंगे? कहने से तो समाज सुधरेगा नहीं, जब तक मैं अपना सुधार करने में समर्थ नहीं हूं तब तक मैं क्या समाज को सुधार सकता हूं? यह प्रश्न है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको हम भूल जाते हैं। जब मैं समाज को सुधारने की बात कहता हूं तो मैं यह भूल जाता हूं कि क्या मैं समाज को सुधारने में समर्थ हूं। यदि मैं साथ ही साथ अपने को भी सुधारने की चेष्टा करता रहूं तब तो यह कहने में कोई तुक भी है कि मैं समाज को सुधारना चाहता हूं, पर यदि मैं अपने को न सुधारूं और यह दावा करूं कि मैं समाज का सुधार कर सकता हूं, यह दावा तो एक मृथा दावा है। इसको हम कहेंगे कि इस दावे में कोई दम नहीं है। तो स्वामी जी एक और जो उदाहरण है बहुत पसंद करते थे, एक घटना है जो घटना एकनाथ के जीवन की कही जाती है। एकनाथ आप जानते हैं महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हो गए, तो ये सब गांव के गांव बहुत से लोग मिलकर के तब जाते थे तीर्थ यात्रा में। वे गए हैं सब गंगोत्री, वहां से वे लेकर के जल, गंगा जल लेकर के जा रहे हैं रामेश्वर, वहां जाएंगे और अभिषेक करेंगे। आप उस समय की परिपाटी जानते हैं, बरसों लग जाते थे इस यात्रा में। तो कहां पैठन, पूना के पास, पैठन से यह दल जाता है कहां गंगोत्री, कितना कठिन, और वहां से कांवरों में भर करके जल, मानो यह जत्था चला जा रहा है। और जाते जाते जिस समय आंध्र प्रदेश में वे आते हैं, 3 वर्षों से दुर्भिक्ष पड़ा है, रास्ते में कई जानवर पानी के कारण मर गए हैं, वहां पर जब ये काफिला चला जा रहा है, देखा 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 सभी ने, एकनाथ ने भी देखा, एक गधा मुमूर्षु के समान पड़ा है। एकदम कांवर उतार दिया, एक तरफ का पात्र जल का ले जाते हैं एकनाथ गधे के पास, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाते हैं गधे में, थोड़े थोड़े जब प्यास उसकी मिटती जाती है, स्फुरना होती है, और पूरा पात्र खाली कर दिया। गधे ने आंख खोल करके देखा, चेतना लौट आई, तो दूसरा पात्र भी कांवर के दूसरी तरफ का उठा करके ले गए और वह भी पूरा पिला दिया। गधा उठ खड़ा हुआ, फुरफुराता हुआ, और एक तरफ चला गया। मित्रों ने कहा कि एकनाथ कैसे मूर्ख हो, अरे कुछ तो जल बचा करके रखना था, अभिषेक कैसे करोगे रामेश्वर जाकर के, किस जल से? भोलेपन से पूछा एकनाथ ने, तुम लोग अपने पास का जल मुझे अभिषेक के लिए नहीं दोगे? अरे सो तो हम दे देंगे एकनाथ, पर पुण्य तो इसमें रहता है, अपने लाए जल से अभिषेक करने में। एकनाथ ने कहा, देखो मैं भी तो तुम्हारे साथ ही चल रहा था, अचानक मैंने देखा भगवान रामेश्वर शिव गधे में आ गए, आविर्भूत हो गए, और मुझसे कहने लगे, मैं यहां पर पानी के बिना छटपटा करके प्यासा मर रहा हूं, और तू मुझे नहलाने के लिए रामेश्वर जल ले जा रहा है, क्या मैं मर जाऊं पानी के अभाव में? तो भैया, मैंने तो भगवान रामेश्वर शिव का ही अभिषेक किया है। यदि यह भाव है तो आप समझ सकते हैं इस धर्म में कितनी तीव्रता है। यह सही धर्म है, यह धर्म का था जो भारत में था, और आज वह धर्म कहां चला गया? हम धर्म का नाम तो लेते हैं, पर धर्म के क्षेत्र में हम कितने स्वार्थी हैं, हम भूल जाते हैं धर्म हमारे लिए व्यापार बन गया है, विनिमय की वस्तु बन गया है। हम लेते हैं नाम कि हम बड़े धार्मिक हैं, पर कहां धार्मिक हैं? हमारा स्वार्थ कहां कुंठित हुआ है, कहां दबा है? तो यहां पर यह जो असंभूति और संभूति की उपासना है, मानो असंभूति का जो उपासक है वह स्वार्थी होता है, और जो संभूति का उपासक होता है वह दूसरों की सेवा करना चाहता है। पर यह कहा गया कि देखो, जब तक दूसरों की सेवा करने की क्षमता अपने में प्राप्त न कर ले, तब तक वह कैसे दूसरों की सेवा करेगा? मान लीजिए मैं हूं टीबी का मरीज और लोगों को पानी पिलाना चाहता हूं, और मैं कहता हूं कि भाई गर्मी के दिन है, मैं तो लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ठीक है, तो जब मैं पानी पिलाता हूं, एक बार मुझे सोचना तो चाहिए कि मैं पानी के साथ साथ क्या अपने टीबी के कीटाणु भी तो नहीं बांट रहा हूं? इसका भी तो मुझे विचार करना चाहिए, मुझ में वह पात्रता है क्या, जल पिलाने लायक स्वस्थता मेरे भीतर है क्या, कहीं समाज की सेवा करने जाकर के मैं उसकी असेवा न कर बैठूं, मैं उसका अकल्याण न कर बैठूं। तो हम समाज सेवा करने जाते हैं तो हम बहुधा देखते हैं कि समाज के सेवक समाज का कल्याण नहीं अकल्याण कर बैठते हैं। तो यह जो सावधानी है, इस सावधानी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। कहा गया है कि संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेद उभयम सह, तो कहते हैं कि विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा और संभूत्यामृतमश्नुते, विनाश के द्वारा जब तद्वेद आत्म तत्व को हम जानते हैं, इन दोनों के साथ, संभूति के साथ और विनाश के साथ। असंभूति को विनाश क्यों कहा? व्यक्ति समाज की अपेक्षा अधिक विनाशी है, व्यक्ति तो मर जाता है, अधिक से अधिक 100 साल रहेगा, पर समाज कितने वर्षों तक रहता है? तो समाज की तुलना में व्यक्ति विनाशी है, इसीलिए यहां पर असंभूति के लिए विनाश शब्द का भी प्रयोग किया। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि दोनों को जानो, ईश्वर के साथ आत्मतत्व के साथ, जब आत्मा को केंद्रित करके हम करते हैं, अपनी व्यक्तिगत साधना करते हैं और सामाजिक साधना करते हैं, तब कहते हैं कि व्यक्तिगत साधना में वह क्षमता है, वह ताकत है। क्या ताकत है? हमको मृत्यु से पार ले जाएगी। यह जो व्यक्तिगत साधना है, जो तपस्या है, यदि ठीक ढंग से हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सद ये षड्रिपु जो हमको मारते रहते हैं, व्यक्तिगत साधना के द्वारा मैं इन पर नियंत्रण पाने में समर्थ होता हूं, तो वह सामर्थ्य कैसे मिलेगी? मिलेगी आत्म तत्व को केंद्रित करके। व्यक्तिगत साधना में करता हूं तो इन रिपुओं पर नियंत्रण पाने की क्षमता मुझे मिलती है। यही मृत्यु को पार करना है। विनाश के सहारे में मृत्यु को पार करता हूं। और जो संभूति है, समाज साधना है, वह तो अमृत है। जहां पर मैं दूसरों के सामने, समाज के सामने जाकर के यह अमृत फल बांटता हूं, यह मानो जो दूसरों की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से, वह चित्त का शोधन है, वह अमृत तत्व का मानो प्राप्ति कर लेना है। समाज की वाहवाही मुझे मिलती है, ठीक है, पर उससे मैं प्रभावित नहीं होता, लोगों का कल्याण करता चलता हूं। इसी दृष्टि से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य बनाया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत धीताय च। संभूति में रत रहना मानो यह जगत का कल्याण करना, और असंभूति की उपासना करना माने आत्ममोक्ष। आत्ममोक्ष और जग कल्याण, ये जो द्विविध पक्ष हैं, ठीक इन द्विविध पक्षों की यहां पर बात हुई है। और ये दोनों पक्ष एक में आकर के जुड़ जाएं, वह एक क्या है? ईश्वर तत्व, आत्म तत्व, वह केंद्रित तत्व, उस पर निश्चित होकर के हम व्यक्तिगत साधना करें तो परम फल प्राप्त होता है, सामाजिक साधना करें तो परम आनंद का फल प्राप्त होता है। ये दोनों बातें सद्धति हैं, ऐसा बताया गया। तो गुरु जी ने उपदेश दिया कि देखो बेटे, इस प्रकार से तुम करो तो तुम क्या देखोगे? देखोगे तुम्हारा जीवन ठीक ठीक परिचालित होगा। गुरु जी ने शिष्य को उपदेश दिया, कर्म और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है बेटे, इस भौतिकता को पाने के लिए, भौतिक समृद्धि पाने के लिए तुम चेष्टा करो, पर भगवान को केंद्र बना करके करो तो भौतिक समृद्धि हमारे जीवन में आवे, और उसी प्रकार हम विद्या में रत रहें। हमारी यह जो आध्यात्मिक उन्नति है वह भी बहुत हमें हासिल हो, भगवान को केंद्र बना करके। यह द्विविध साधना अपने जीवन में करो, आत्मनो मोक्षार्थम, यह साधना चले। इस प्रकार जब साधना चलेगी, मेरा देश उन्नत होगा, पुष्ट होगा। यह जो खून आज खराब हो गया है, डायलिसिस करने पर भी थोड़ी देर के लिए शुद्धता मालूम पड़ती, पुनः खराब हो जाता है। आज तो यह भीषण ऐसा भयावह दृश्य दिखाई देता है। भारत को देखते हैं, सब क्षेत्रों में मनुष्य का स्वार्थ कितना प्रबल है। थोड़े से स्वार्थ के लिए मनुष्य समाज का कितना बड़ा नुकसान करने में नहीं हिचकता है, देश का कितना बड़ा नुकसान करने में नहीं हिचकता है। तो यह जो हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, इसका मतलब क्या है? न तो हमने ठीक ठीक धर्म का पाठ पढ़ा, और न ही हमने भौतिक क्षेत्र में ही तरक्की की। तो बाहर के देश भौतिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनके जीवन में भी हलाहल है, विष है, बड़ी अशांति है, बहुत तनाव है, ड्रग एडिक्शन। आखिर भारत में वहीं से बाहर से ही आया है। आज भारत में कम से कम भगवान की इतनी कृपा है, हमारे परिवार आज भी बहुत अच्छे हैं बाहर के परिवारों की तुलना में। बाहर के देशों में तो परिवार कांच की तस्तरी के समान टूट जाते हैं, कुछ ही वर्षों में, कुछ ही महीनों में मानो जोड़ा टूट जाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। कैसा भयावह दृश्य हो सकता है, आप कल्पना कीजिए। जहां पर एक पुरुष 5-6 शादियां अपने जीवन में करता है, जहां पर एक स्त्री अपने जीवन में 5-6 पति करती है, और सबसे बच्चे होते हैं, आप कल्पना तो कीजिए। बच्चों की उस मनोदशा का एक बार थोड़ा अनुभव तो कीजिए कि मां ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया, ऐसे बच्चे आखिर आक्रामक रुख न ले तो क्या हो? ऐसे बच्चे अगर पागल न हो तो क्या हो? ऐसे बच्चों के जीवन में अगर तनाव न हो तो क्या हो? और हमारे देश में, हम तो कहते हैं हमारे देश में जरा उल्टा है, इतना प्यार है, इतनी आसक्ति है कि हम अपने बच्चे को 10 मील दूर नौकरी करने के लिए जाने नहीं देना चाहते, अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। 40 साल का हो गया फिर भी हमारी आंखों में वो मुन्ना ही है, मुन्ना नहीं रह सकता, मानो वह मुन्ना ही है, या आसक्ति की भी चरम सीमा है। तो जो हो, पर दूसरी दृष्टि से देखेंगे, भारत की यह विशेषता है, यहां एक परिवार का सुख है जो बाहर के देशों में बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होता है। तो ये दोनों प्रकार है, भौतिक तरक्की उनकी जो हमारी आंखों में चकाचौंध पैदा करती है। स्वामी जी चाहते थे कि भारत भी भौतिक तरक्की करे, पर अपने इस गुण को नष्ट करके नहीं, इस अध्यात्म को नष्ट करके नहीं, यह अध्यात्म हमारा पुख्ता बना रहे, ताकि हम अध्यात्म का ध्यान उन द्वेषों को कर सकें, उनके दुखों का निवारण करने के लिए, और उनसे हम भौतिक तरक्की लें। अपने दुखों का निवारण करने के लिए, हमारा दुख भौतिक है, मानसिक है, उनका दुख बहुत अधिक आध्यात्मिक है, तो मानो वे कहा करते थे विनिमय करें और इस प्रकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, ऐसा सपना उन्होंने देखा था। तो वे कहा करते थे भारत को संबोधित करके, भारतवासियों को संबोधित करके, उठो जागो, तुम स्वार्थी हो, धार्मिक धार्मिक अपने को कहते हो पर पहचान नहीं पा रहे हो, चरित्र तुम्हारा गिरा हुआ है, उसे पुष्ट करो।